Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो ये खाने से तुम्हें बीमार पड़ गया और वो स्वस्थ होने तक उसको बोलते रहे खा ले और उस बच्चे के मन में ऐसी घृणा हो गई उस फल के प्रति, उस महात्मा ने आत्मचरित्र में लिखा है, उसके बाद मेरे मन में कभी फल खाने की इच्छा नहीं हुई। और जब कभी फल मेरे सामने आता था तो ऐसा लगता था कि भैया ये हटाओ, हमारे सामने से हटाओ। ये हमारे वेदों की प्रक्रिया है, जीवन को निष्कामता में, अकामता में, निराशक्ति में कैसे ले जाया जाए। ये भोग से भी यदि सही ढंग से भोग हो तो हमें वो वैराग्य में ले जाता है। एक और एक महात्मा था, उन्होंने अपनी जीवन की घटना सुनाई। बोले बचपन में मेरे को दिया बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था दिया, और मैं बार बार दिए को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता था। वो पुराने जमाने में दिए रहते थे, बिजली तो थी नहीं घर में, ऐसे कहीं दिए मिट्टी के, और वो बच्चा जाके पकड़ना चाहता था। मां परेशान हो जाती थी, रोटी बनाती और अग्नि की तरफ बढ़ता बच्चा, उसको बहुत अच्छा लगता था अग्नि, दिया, अगरबत्ती, मोमबत्ती। एक दिन पिता ने बोला कि रुको रुको, जैसे बच्चा दिए की तरफ बढ़ने लगा, पिता ने बोला रुको रुको, पत्नी को बोला रुको तुम, उसको जाने दे, दिए की तरफ जाने दे। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, वो तो जला, अपना हाथ जला देगा। उसके पिता ने बोला बिल्कुल उसको जाने दे, दिए की तरफ बिल्कुल जाने दे। वो गया बच्चा, पहले तो देखा कि पिताजी रोक तो नहीं रहे, मां रोक तो नहीं रहे, पहले देखा, इधर उधर देखा, वो समझ गया अब रोकने वाला कोई नहीं, और खुश हो गया और खुश हो गया, और दिए की आगे गया और गया, और वो देखता भी जा रहा था कि मेरे को कोई रोकने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमेशा रोकते थे लोग। आश्चर्य की बात, जैसे ही बच्ची ने दिए में हाथ डाला, आपको तो मालूम है वो दिया कभी स्वागत थोड़ी करता है, जैसे ही उन्होंने दिए में हाथ डाला और उसका हाथ जला और एकदम चिल्ला पड़ा बच्चा, बोले तत्ता। वो महात्मा जी सुनाते थे, वो बोले जैसे ही दिए ने मेरे को जलाया और उसी समय मेरे मुख से एक शब्द निकला, बोले तत्ता, और भागे भागे आए और मां के गोद में और दिए की तरफ इशारा करके बोलने लगे तत्ता। और अब जैसे ही दिया देखता बच्चा, वो मां को बोलता तत्ता, अरे काट ये जला देगा ये, मां बोलती पकड़, बोले न तत्ता ये काट जला देगा, पिताजी बोलते जा अग्नि को पकड़, बोलते तत्ता ये जला देगा ये। ये हमारे वेदों की प्रक्रिया है कि आप अनुभव करेंगे तो बहुत सारे अनुभव आपके जीवन में बहुत गहरी संवेदनाओं के द्वारा आपको वैराग्य में ले जाएंगे, आपको अनासक्ति में ले जाएंगे। इसलिए कर्म का मार्ग, चाहे वो निष्काम कर्म का मार्ग हो चाहे सकाम कर्म का मार्ग हो, हमें ले जाना है अनासक्ति में, और अनासक्ति चित्त की शुद्धि है, आसक्ति चित्त की अशुद्धि है। जहां पर हमारे मन में आसक्ति होती है वो आसक्ति हमारी इंद्रियों को जगाती है, ये आसक्ति इंद्रियों का जागरण है, ये आसक्ति इंद्रियों का पोषण है। यदि आसक्ति हमारे मन में ना हो तो हमारी इंद्रियों का जगना ही संभव नहीं है। यदि रूप की आसक्ति ना हो तो हमारी आंखें ही न खुले, आकार के प्रति आसक्ति ना हो, ये आकारों में जो सौंदर्य बुद्धि है वो ना हो, ये आकारों का आकर्षण ये हमारे आंख के खोलने के प्रति कारण हो जाता है। और यदि आकृति के प्रति, रूप आदि के प्रति आकर्षण ना हो, आसक्ति ना हो, तो हमारी आंखें ही न खुले। ये हमारी सारी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेन्द्रियां, ये सारी आसक्तियों के द्वारा जगती हैं। ये भीतर का आकर्षण हमारी इंद्रियों को बाहर कर देता है, बहिर्मुख हो जाती है, और बहिर्मुख अवस्था में आत्मसत्ता का बोध संभव नहीं है। इसलिए हमें अंतर्मुख होना, संवेदना का अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। हमारी संवेदना बाहर प्रकट हो जाती है, जैसे खिड़की खोल देते हैं ना, वैसे बाहर आंखें खुल जाती हैं, इसलिए बाहर का ज्ञान अंदर आ जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां मानो जैसी खिड़कियां खोल देते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां संवेदनाएं प्रकट करती हैं। बाहर की संवेदनाएं वो अपने बहुत सारे विषयों को लेकर अंदर आती हैं, क्योंकि ज्ञान कभी निर्विषयक नहीं होता है, ज्ञान का कोई ना कोई विषय होता है। जो भी ज्ञान होता है वो निर्विषय नहीं होता है, निर्विषय ज्ञान तो परमात्मा है और सविषय ज्ञान अनात्मा है। ये दुनिया के जितने भी ज्ञान है वो निर्विषय नहीं सविषय होते हैं, हमारी जितनी स्मृतियां हैं वो सविषय होती हैं, हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं और जाने के बाद फिर वो संस्कार लेके अंदर आ जाती हैं, फिर वो संस्कार स्मृतियों को पैदा करते हैं। हमारा संपूर्ण ज्ञान स्मृत्यात्मक है, इसलिए भगवत गीता में स्मृति शब्द का प्रयोग किया है। क्रोध से प्रारंभ कर स्मृति भ्रंश तक, इसलिए भगवान ने बोला स्मृति भ्रंश विनाश के प्रति कारण। और वो कौन सी स्मृति? सम्यक स्मृति, जिसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। हमारे भीतर जब क्रोध की ज्वालाएं प्रकट हो जाती हैं तो हमारे भीतर जो स्मृति है उसको नष्ट कर देती है। और वो सम्यक स्मृति माने बहुत अच्छी अच्छी जो यादें हैं, जैसे हमारे सामने गुरु हैं और गुरु के प्रति आदर, आस्तिकता, आस्था, महत्व बुद्धि शास्त्र ने निर्मित की हैं, ऐसी उत्तम कोटि की जो स्मृति है हमारे मन में, वो क्रोध उसको समाप्त कर देता है। फिर उस समय याद नहीं रहता ये हमारे गुरु हैं, ये हमारी मां हैं, ये हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये स्मृत्यात्मक बोध है। इसलिए हमारे पास जो भी चीजें महत्वपूर्ण जो भी चीज है वो स्मृति है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और भगवान ने भी बोला नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, वो स्मृति है, वो शास्त्र की स्मृति है। इसलिए आप बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण ऐसा बोलते हैं, वो स्मृति वो ज्ञान बहुत गहरी चीजें। वो ज्ञान कभी निर्विषय नहीं होता है, जैसे आप बैठे हैं और जैसे स्मृति जागती है, आपके आध्यात्मिक साधना में प्रतिबंध ज्ञान नहीं, वो स्मृति है। आप बैठे हैं और कोई चीज आपके सामने आई, वो क्या है? वो स्मृति है, याद है, किसी की याद आ गई और आप खो गए, उस यादों में खो गए, क्योंकि उस यादों का विषय है आपके सामने। आपको कोई याद आता है तो चेहरा भी तो होगा, याद माने स्मृति, और उस स्मृति का कोई चेहरा होगा, कोई आकृतियां होगी, रूप होगा, सौंदर्य होगा, आकर्षण होगा, बहुत सारी चीजें होगी, उसे देश जुड़ा होगा, काल जुड़ा हुआ, व्यक्ति जुड़े हुए होंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में स्मृति, और उस स्मृति को पैदा करने वाला अनुभव है, उस अनुभव को पैदा करने वाला इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जगाने वाली वासना है, और वासनाओं का मूल अज्ञान है। अब हमारे जीवन में जब तक वो वासना का क्षय ना हो, तब तक हमारी इंद्रियों की शिथिलता संभव नहीं है, और इंद्रियों की शिथिलता संभव नहीं है तो फिर वो स्मृतियां पैदा करेगी। इंद्रियां बहुत सारी चीजें पैदा करेगी, उपद्रव खड़ा कर दे। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा कि सबसे पहले उस वासना को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो उसका जो मूल तत्व है, अब उस वासना को नियंत्रण कैसे करें? तो भोग के द्वारा, योग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा। इसलिए हमारे शास्त्र ने तीन उपाय बताए उस वासना पर नियंत्रण करने के लिए। निष्काम कर्मयोग का आश्रय हमें आदत डाले, निष्काम कर्म करने की भी आदत डाले। जब तक हम निष्काम कर्म करने की आदत न डालें, परम पूज्य महाराज श्री कल के प्रवचन में कह रहे थे कि आदमी सोचता है ये करने से क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा, हमेशा सोचता है हमको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या फायदा। और वो फायदे के चक्कर में तो हम बहुत ज्यादा फिर फायदे वाले हो जाते हैं, हर जगह पर फायदा देखने लगते हैं। यहां तक कि हम भगवान के मंदिर में भी जाए तो आदमी सोचने लगता है कि जाने का क्या फायदा, भगवान की पूजा करेगा तो क्या फायदा, प्रणाम करने का क्या फायदा। और इसलिए दुनिया में जितने बड़े से बड़े काम लोगों ने किए हैं वो सब निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। अब आप गांधी जी को पूछना कि आप इतना बड़ा काम करते रहे तो उस समय आपके मन में ये कामना पैदा हुई क्या कि ये काम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। अफ्रीका में, दूसरे देश में, वहां के लोगों की दुर्दशा और वो कैसी करुणा उनके दुखों को मिटाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए वहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनके मन में यदि ये भाव पैदा होता इससे हमको क्या मिलेगा, तो कभी नहीं कर पाते हो। यदि गांधी जी के मन में ये भाव पैदा होता कि इससे हमको क्या मिलेगा तो गांधी जी कभी नहीं करते। यहां तक गांधी जी ये सोचते कि देश स्वतंत्र भी हो जाए तो हमको क्या मिलेगा। आदमी सोचता है तो हमको क्या मिलेगा, आदमी सोचता है कि आदमी चुनाव जीत जाए तो हमको क्या मिलेगा। यदि आप इतना भी हैं तो आप कर्म नहीं कर सकते, फिर आप आलस्य में, आप प्रमाद में जाएंगे। आपका विराट कर्म जब तक आप निष्काम नहीं होंगे तब तक पैदा होना संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के श्रेष्ठतम लोग जिन्होंने दुनिया के लिए काम किया वो सब ऐसे निष्काम थे, वो व्यक्तिगत उनकी आकांक्षाएं नहीं थी। इसलिए निष्काम कर्मयोग, भगवान का आदत डालो, निष्काम कर्म करने की आदत डालो, कर्म करो, तुम्हारी दृष्टि पूरी कर्म पर हो, लेकिन कर्म से मिलने वाला जो फल उस पर तुम्हारी दृष्टि ना हो। ये निष्काम कर्म चित्त शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम उपाय। इसलिए भगवान ने आपको गीता जी में हर जगह पर यह बात बोली, असंग होके कर्म करो, असंग होके कर्म करो, असंग होके कर्म करो। इसके दो फायदे, सद्य जीवन में फायदे, हम सफल हो और सफलता की बहुत गहरी तीव्र वेदना संवेदना ना हो। कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत कोई गहरी चीज नहीं है, ये चीज करने से ही फल हमको मिलेगा और मिल गया तो उसके बाद आप अभिमान में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, सफलता आपको आत्माभिमान में नहीं ले जाएगी, आपको अभिमान में, अहंकार में नहीं ले जाएगी, और अहंकारी होना एक बहुत बड़ी असफलता हमारे जीवन की है। व्यक्ति जब अहंकारी होता है तो असावधान हो जाता है, व्यक्ति कर्म के प्रति असावधान हो जाता है। बहुत बड़ी सफलता व्यक्ति को कर्म के प्रति असावधानी में ले जाती है। एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ज्यादा मार्क्स मिले उसको, और लोग बोलने लग जाए तुम बहुत बुद्धिमान हो, बच्चे का ध्यान हट जाता है पढ़ने की तरफ से, वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं। इसलिए आप किसी साधु को बोलना कि आप बहुत ज्यादा साधु, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो सोचता है कि मैं हो गया अच्छा, क्योंकि अच्छे होने का प्रमाण बाहर से नहीं भीतर से होता है। बाहर से अच्छे होने का प्रमाण नहीं मिलता है, प्रमाण तो भीतर से होता है कि हम कितने अच्छे हैं हमें मालूम है, लेकिन उस समय आदमी भ्रम में प्रवेश करता है। आदमी सोचता है कि मैं अच्छा, मैं सफल, और उसके बाद उसकी योग्यता को आगे बढ़ाने की जो पुरुषार्थ की मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है फल के ऊपर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के जीवन में, अभिमान और अभिमान जन्य कर्म के प्रति जो दुर्लक्ष है यह बहुत बड़ा नुकसान है उसका। और जिसका नारायण फल के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है वो व्यक्ति कर्म करता जाता है, मिला ठीक है, और नहीं मिलने के बाद व्यक्ति निराशा में, हताशा में नहीं जाता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता नहीं है, और वो बहुत ज्यादा सफलता के ऊपर ध्यान दे तो आदमी असफल होने के बाद आत्मविश्वास में नहीं रहता, उसका डगमगाने लगता है, निराश होने लगता है, हताश होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कामना ही मत करो, निष्काम कर्म करो। अब वो निष्काम कर्म करेगा तो आदमी सफलता में और असफलता दोनों अवस्थाओं में अपने को कर्मयोगी बना रखे। इसलिए सर्वोत्तम उपाय धीरे 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 निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर हम अपने वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लें। दूसरा उपाय कामना के द्वारा, कामना की निवृत्ति जैसे मैंने अभी आपको बताया, भोग भी व्यक्ति को योग में निराशक्ति में ले जाता है। और तीसरा जो उपाय है वो भगवद आश्रय, तीसरा उपाय है भगवत आश्रय। हम जप करें, भगवान का पूजन करें, ये भक्ति का भाव है और इससे भी आदमी के वासनाओं पर नियंत्रण हो जाता है धीरे 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 धीरे। और वासनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है मल रूप जो दोष है इसको मिटाना, जो आपके वेदांत में हर जगह पर इसका उल्लेख किया है। मल 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 माने कचरा, मल माने वासना, इसको मिटाने के लिए संपूर्ण वेदों में कर्म का प्रतिपादन मल रूप दोष को मिटाने के लिए किया है। इसलिए आप सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, अब यहां सर्वे वेदा का अर्थ कर्म प्रतिपादक वेद ही उसी परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी विधा अलग है कि आप निष्काम कर्म अथवा सकाम कर्म कर अपनी जीवन की वासनाओं पर नियंत्रण, और जीवन की वासनाओं पर नियंत्रण करना भी परमात्मा की प्राप्ति का अंग है। इसलिए कर्म भी उसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, विरोध नहीं है। जहां पर जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी धीरे 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 परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए शास्त्र जो भी आपको कर्म का विधान कर रहा है वो धीरे धीरे वासना पर नियंत्रण कर हम परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन सके। और कोई उपाय भी तो नहीं है ना, परमात्मा को पाने के लिए और क्या उपाय है। एक छोटा सा बच्चा है और उसको आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है, उसके द्वारा आपको पीएचडी कराना है, तो आपको उसको एबीसीडी तो सिखाना ही होगा, आपको पहली कक्षा में उसको प्रवेश दिलाना ही होगा। पहली कक्षा में प्रवेश दिलाए बिना आप उसे पीएचडी कैसे कराओगे। क्रमिक विकास, ये कर्म का प्रतिपादन हमारे जीवन का क्रमिक विकास है। ये क्रमिक विकास की अवधारणा हमारे वेदों ने रखी, इसलिए सबसे पहले कर्म का प्रतिपादन बहुत सरलतम ढंग से व्यक्ति उस तत्व को पाने के योग्य बन सके। और दूसरा जो प्रतिबंध हमारे जीवन में है वो है विक्षेप का प्रतिबंध। वासना हमारे चित्त को विक्षिप्त कर देती है, इसलिए वासना के क्षय के साथ चित्त की स्थिरता भी बहुत जरूरी है। चित्त की स्थिरता भी बहुत जरूरी है और चित्त की स्थिरता के लिए उपाय बताया है उपासना। ये उपासना जो है ये चित्त को स्थिर बनाने का सर्वोत्तम उपाय। आपका जो योग है, जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये सारी चीजें जैसे ओंकार का ध्यान, प्रतीक ध्यान, साकार विग्रह विष्णु भगवान में जो ध्यान की प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया है, वो सारी प्रक्रियाएं चित्त के विक्षेप को दूर करने के लिए कहा है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् व्रतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। पतंजलि योग दर्शन आप पढ़ना, उसमें बहुत विस्तार रूप से हमारी वृत्तियां कितनी हैं और वो वृत्तियों का फैलाव कैसा है और ये वृत्तियों के फैलाव को कैसे रोका जाए, कैसे उसका निरोध किया जाए। और इसीलिए हमारा उपासना का शास्त्र, उपासना का जो प्रकरण है ये वेदों ने हमारे सामने रखा। भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, अब अर्जुन निष्काम है, अकाम है, वासनाओं पर नियंत्रण है, लेकिन मन में चंचलता है और वो अपने चित्त को एक जगह पर स्थिर करना चाहता है। जब भगवान ने कहा समत्व रूप जो ब्रह्म तत्व है, जहां वैषम्य नहीं है, जहां न ऊंचा नीचा है, देशाक्रांत कालाक्रांत जो तत्व नहीं है, अखंड चिदैक रस, और उसमें तुम अपने चित्त को स्थिर करो। मानो कि उस समय अर्जुन ने आंख बंद की और आंख बंद करके उस कोशिश करने लगा कि उस तत्व में मैं अपने चित्त को स्थिर करूं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आंख खोली और आंख खोल करके अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी। अर्जुन ने जो शब्दों का प्रयोग किया है बहुत गहरे शब्दों का प्रयोग किया है, केवल इतना नहीं बोला चंचलम, चंचल तो सबका मन है, लेकिन प्रमाथी और बलवदृढ़ ये दो शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन ने बताया पुरुषार्थ करने के बाद भी वो वश में नहीं आया। भाई आप किसी बैल को आप पकड़े तो आप ये कब कहोगे कि ये तो बहुत ताकतवर है, कब बोलोगे? उसके ताकत का एहसास आपको कब होगा? जब आप पकड़ेंगे तब ना। आपने उसके पूंछ को पकड़ा और उसको रोकने की कोशिश की लेकिन रुका नहीं, आपको भी खींच के चला गया, खींचते हुए ले गया, तो आप क्या, ओहो ये तो बहुत ताकतवर है। आप बिना छुए, आप उससे बिना टच हुए कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि वो कितना शक्तिशाली है? आप ज्यादातर ये बोल सकते हैं उसका मोटापा दे, ओहो ये तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना ताकत। लेकिन आपने पूंछ पकड़ा और खींच के ले गया तो आप ओहो बहुत ताकतवर है। इसलिए बलवद दृढ़म ये शब्द जो अर्जुन के दो हैं, उन्होंने कोशिश की, और बात भी सही है। बिना कोशिश मालूम कैसे पड़ेगा कि मन कितना चंचल है? बिना चले मालूम कैसे पड़ेगा कि हम चल भी सकते हैं? हम बिना उठे कैसे मालूम पड़ेगा कि हम गिरने के बाद उठ भी सकते हैं? हम गिरे और हम उठे तब मालूम पड़ा कि हाँ हम गिरने के बाद भी उठ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, पहाड़ चढ़े ही नहीं, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हम गिरने के बाद उठ सकते हैं और पहाड़ भी चढ़ सकते हैं? इसलिए अर्जुन का पुरुषार्थ, यहां पर अर्जुन का पुरुषार्थ परिलक्षित होता है। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला है कि चंचलम ही मन कृष्ण, कभी माला लेके बैठे हो कभी ध्यान लगाया है? लगाया ही नहीं। कभी माला लेके बैठे ही नहीं, कभी कोशिश की है, किए ही नहीं, और उसके बाद आप बोलो कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बल, वो बात बनेगी नहीं। इसलिए अर्जुन की अनुभव की बात, और इसीलिए भगवान ने भी यही बात बोली। भगवान ने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे असंशयम। भगवान असंशयम ही महाबाहु, हे महाबाहु तुम बहुत पुरुषार्थी हो, तुम बहुत श्रमशील हो। क्या महाबाहु का अर्थ ये मत सोचना कि उसके भुजदंड बहुत बड़े बड़े थे, उस अर्थ में नहीं है। या महाबाहु का अर्थ है तुम बहुत श्रमशील हो, तुम बहुत पुरुषार्थी हो, तुम किसी भी चीज को अपने हाथ में लेते हो तो उसको सफल बनाने की कोशिश करते हो, ये महाबाहु। असंशयम तुम ठीक बोल रहे हो, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। भगवान ने सहमति व्यक्त कर दी और उसके उपाय, उसका उपाय बता दिया, अभ्यास है न कौनते वैराग्य न चक्रियते। बोले अभ्यास करो, ये जो अभ्यास है ना ये उपासना का मार्ग है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, बार बार ध्यान उपासना के द्वारा हम चित्त में जो विक्षेप रूप प्रतिबंध है उसको दूर करना है। इसलिए आपका उपासना जो कर्म, उपासना जो वेद कांड है वो इसमें सार्थक है। उपासना का प्रतिपादन भी चित्त के विक्षेप रूप प्रतिबंध पर नियंत्रण कर आत्मज्ञान में ले जाना है, अंततः आत्मज्ञान में जाना है। ज्ञान का प्रतिपादन तो तत्व का प्रतिपादन ही है, इसलिए सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। कर्म उपासना और ज्ञान, मल विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का प्रतिपादन, इन तीनों को हटाने के लिए और आत्मज्ञान में ले जाने के लिए तत्व का प्रतिपादन है। ये पहले पंक्ति का अर्थ हुआ, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। आज यहीं पर विराम, अभी आप जप करेंगे, थोड़ा सीधे बैठ जाएं। ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय।
ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम शांति शांति शांति।